प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीव वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। व्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
परमेश्वर को जानते हुए बिना महिमा उनको दी, अंधकार से जोड़ा नाता किया उससे प्यार। ज्योति आई है जग में कर्ण दूर अंधकार, पार उसे यहाँ नहीं किया परमेश्वर को जानते हुए बिना महिमा उनको दी, अंधकार से जोड़ा नाता किया उससे प्यार। ज्योति आई है परमेश्वर ने हमसे किया यूं प्यार, और चाहा कि पापों से ले उबार। परमेश्वर ने हमसे किया यूं प्यार, और चाहा कि पापों से ले उबार। प्रायश्चित स्वरूप अपना पुत्र दिया कि विश्वासी उसमें पाए क्षमा का उपहार। ज्योति आई है जग में कर्ण दूर अंधकार, पार उसे यहाँ नहीं किया गया स्वीकार। परमेश्वर को जानते हुए बिना महिमा उनको दी, अंधकार से जोड़ा सच्चाई पर है जो कोई चलता, अंधेरे से ज्योति में है आता। सच्चाई पर है जो कोई चलता, अंधेरे से ज्योति में है आता। जिस छुपे ईश्वर द्वारा ज्योति आई है जग में कर्ण दूर अंधकार पर उसे यहां नहीं किया गया स्वीकार परमेश्वर को जानते हुए बिना महिमा उनको दी अंधकार से
इसी सुंदर संगीत रचना के साथ ही हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमें आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम से रोमियों की पत्री का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आशा है आपको इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ पहुंचा है। हम ये आशा करते हैं कि आपने हमारे पिछले कार्यक्रम के द्वारा लाभ उठाया है। पिछले बाइबल अध्ययन में हमने जिन बातों पर विचार किया था आइए उन्हें एक बार पुनः संक्षिप्त रूप में दोहरा लेते हैं। हो सकता है आप हमारे पिछले कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो सके हों। पिछले कार्यक्रम में हमने सर्वप्रथम सीखा कि परमेश्वर ने पुराने नियम में पहले ही से समस्त बातों को हमारी शिक्षा के लिए लिखा है और इसलिए हमें पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। पवित्र शास्त्र हमें धैर्य प्रोत्साहन तथा आशा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में पवित्र शास्त्र के धैर्य तथा प्रोत्साहन के द्वारा हम परमेश्वर की आशा प्राप्त करते हैं। हमने ये भी सीखा और हमको बताया गया कि हम एक दूसरे को ऐसे ग्रहण करें जैसे मसीह ने हमारी समस्त निर्बलताओं सहित परमेश्वर की महिमा के लिए हमें ग्रहण किया है। फिर हमने ये भी सीखा कि मसीह खतना वालों की अर्थात इसराइल प्रजा की सेवा के लिए संसार में आए। इसराइल प्रतिज्ञा की संतान है और इसराइल के पूर्वज इब्राहिम इसहाक तथा याकूब को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार के साथ प्रमाणित किया। गैर यहूदियों के लिए परमेश्वर की दया अर्थात अनुग्रह है। परमेश्वर ने गैर यहूदियों को अपनी दया और अपना अनुग्रह प्रदान किया है। वे अनुग्रह व दया के फलस्वरूप समस्त आशीषों में सम्मिलित हुए हैं और इसलिए हम परमेश्वर की दया के लिए परमेश्वर की महिमा करते हैं और हमको करना चाहिए। 13वें पद में हमें परमेश्वर के एक नए नियम के विषय में एक नए नाम के विषय में जानकारी प्राप्त हुई और ये उपनाम अर्थात एक पदवी है आशा का परमेश्वर। जैसा हमने पढ़ा अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। और आगे लिखा है जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आशा का परमेश्वर ये एक उपनाम है। ये आशा का परमेश्वर आपके हृदयों को आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और जिसके द्वारा आपके जीवन आशा और सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी आशा बढ़ती जाए ये पौलुस की प्रार्थना है और ये परमेश्वर की इच्छा है। ये वास्तव में एक आशीष वचन है जिसके साथ ही धर्म सिद्धांत संबंधी भाग समाप्त होता है। अब आज हमारा अध्ययन विषय होगा प्रेरित पौलुस की व्यक्तिगत साक्षी की निरंतरता अर्थात पौलुस एक प्रेरित के रूप में अपनी व्यक्तिगत साक्षी को जारी रखते हैं। उन्होंने इस पत्री को अत्यंत व्यक्तिगत ढंग से आरंभ किया था और अब वे धर्म सिद्धांत के खंड को यहीं पर छोड़कर वो उसी व्यक्तिगत विषय को पकड़ लेते हैं जिसके साथ उन्होंने इस पत्री का प्रारंभ किया था और उस व्यक्तिगत विषय के अंतर्गत वो रोम जाने की इच्छा को व्यक्त करते हैं। जैसा कि हम रोमियों की पत्री के प्रथम अध्याय के 9-12 पदों में पढ़ चुके हैं, और अब रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय के 14वें पद में सुनिए कि वो क्या कहते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं अब पूर्णतया आश्वस्त हूं कि तुम स्वयं भलाई और समस्त ज्ञान अर्थात परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण हो तथा एक दूसरे को चेतावनी तथा उपदेश देने के योग्य भी हो। मित्रवर, ये कैसी उत्तम बात है! ये वास्तविक उन्नति है विश्वासियों की। क्या आपकी स्थानीय मंडली के विषय में ऐसे उत्तम शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि मंडली समस्त ज्ञान से परिपूर्ण है और एक दूसरे को चिताने के योग्य भी है? अब आप मेरे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखें रोमियो की पत्री उसके 15वें अध्याय के 15-21 पदों को। परंतु मैंने तुम्हें कुछ विषयों पर पुनः स्मरण दिलाने के लिए बड़े हियाव के साथ लिखा है। ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया था कि गैर यहूदियों के लिए मसीह यीशु का सेवक बनूं और परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, कि गैर यहूदी रूपी मेरी भेंट पवित्र आत्मा से पवित्र की जाकर ग्रहण की जाए। अतः मुझे यीशु मसीह में उन बातों के विषय जो परमेश्वर से संबंधित हैं बड़ाई करने का कारण प्राप्त हुआ है। उन बातों को छोड़ मैं अन्य किसी बात में कहने का साहस नहीं करूंगा जो मसीह में गैर यहूदियों की आज्ञाकारिता के लिए वचन और कर्म से, चिन्हों और अद्भुत कार्य की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा पूर्ण किए गए। यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तथा मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। मेरे मन की आकांक्षा ये रही है कि जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें, आमीन। प्रिय मित्र, 15वें पद में हम पढ़ते हैं, परंतु मैंने तुम्हें कुछ विषयों पर पुनः स्मरण दिलाने के लिए बड़े हियाव के साथ लिखा है। ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया। मेरे मित्र, जब संत पौलुस ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें लिखा, तो उनका संकेत रोमियों की पत्री की ओर है। मैंने तुम्हें लिखा, वे रोमियों की कलीसिया, रोम की कलीसिया से बात कर रहे हैं। वो रोम के विश्वासियों को अपनी निर्भीकता से सेवा करने के कारण को पुनः स्मरण दिलाने के लिए बताते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के लिए प्रेरित चुना है और इसी के आधार पर परमेश्वर ने मुझे ये सेवा सौंपी जो उसके अनुग्रह के द्वारा मुझे प्राप्त हुई। और वह उसी अधिकार को रोमियो की कलीसिया को पत्री लिखते समय प्रयोग कर रहे हैं। 16वें पद में वो इस प्रकार से लिखते हैं, गैर यहूदियों के लिए मसीह यीशु का सेवक बनूं। फिर से देखिए, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि गैर यहूदियों के लिए मसीह यीशु का सेवक बनूं और परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, कि गैर यहूदी रूपी मेरी भेंट पवित्र आत्मा से पवित्र की जाकर ग्रहण की जाए। प्रिय मित्र, 16वें पद में लेवीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं पौलुस। वो स्वयं को याजक के स्थान पर रखकर अपनी सेवा के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। संभवतः इस समय उनके मस्तिष्क में यहूदी विश्वासी हैं। वो सुसमाचार की सेवा की तुलना याजक की उस सेवा से कर रहे हैं जिसे वो परमेश्वर के भवन में किया करता था। जैसा कि हमने पुराने नियम का अध्ययन करते समय देखा, सो पौलुस भी कहते हैं कि गैर यहूदियों के लिए मसीह यीशु का सेवक बनूं और परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, कि गैर यहूदी रूपी मेरी भेंट पवित्र आत्मा से पवित्र की जाकर ग्रहण की जाए। अब यहां प्रेरित पौलुस स्वयं को एक याजक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जो कार्य पुराने नियम में याजक का था। वही कार्य पौलुस बताते हैं कि वो मेरा है, मैं वो सेवा कर रहा हूं कि मेरी भेंट परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। गैर यहूदी लोग व्यवस्था तथा किसी प्रकार के धर्म के बिना परमेश्वर के समक्ष स्वीकृत हैं, ये एक महान आशीष है। गैर यहूदी अर्थात अन्य जाति लोग व्यवस्था या किसी भी प्रकार के धर्म या किसी प्रकार के आडंबर के बिना वो परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्य हैं, परमेश्वर उनको स्वीकार करते हैं। और ये स्वीकृति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा है, ये किसी अन्य कारण से नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा परमेश्वर एक अन्य जाति व्यक्ति को ग्रहण करते हैं। हमारे समक्ष समझने का विषय यह है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसराइल प्रजा के लिए भेजा कि वह इसराइल की खोई हुई भेड़ों को वापस लाएं, किंतु जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के समीप पहुंचे और उन्होंने उन अन्य जाति लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाया और विश्वास द्वारा उन्होंने भी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त किया है। पौलुस इसी सेवा को आगे बढ़ाते हैं और उस सुसमाचार के द्वारा असंख्य अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं और विश्वास लाने के द्वारा वे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं, अर्थात परमेश्वर उनको स्वीकार करता है। हम प्रेरित पौलुस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार अन्य जातियों अर्थात हमारे पास तक पहुंचा। इसलिए हमको रोमियो की पत्री का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अब 17 से 19 पदों में हमने देखा जहां पर इस प्रकार से बताया गया, अतः मुझे मसीह यीशु में उन बातों के विषय जो परमेश्वर से संबंधित हैं बड़ाई करने का कारण प्राप्त हुआ है। पौलुस कहते हैं मुझे उन बातों के विषय में जो मसीह यीशु में हैं और परमेश्वर से संबंधित हैं बड़ाई करने का कारण प्राप्त हुआ है, उन बातों को छोड़ मैं किसी अन्य बात में कहने का साहस नहीं करूंगा। जो मसीह में गैर यहूदियों की आज्ञाकारिता के लिए वचन और कर्म से, चिन्हों और अद्भुत कार्य की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा पूर्ण किए गए। अब प्रेरित पौलुस इस बात पर बल देते हैं कि मैं केवल उन बातों के लिए परमेश्वर की महिमा करूंगा जिन बातों के द्वारा परमेश्वर ने मेरे द्वारा बड़े बड़े कार्य किए हैं, अर्थात चिन्हों और अद्भुत कार्य की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा पूर्ण किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लूरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। मित्रवर, इस अनुच्छेद में प्रेरित पौलुस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर संकेत कर रहे हैं। यदि आप इस बात को जानना चाहते हैं कि रोम की कलीसिया प्रेरित पत्रस के द्वारा स्थापित की गई या प्रेरित पौलुस के द्वारा, तो हमें यहां पौलुस के शब्दों पर निकटता से ध्यान देना होगा। वो कहते हैं कि मैं किसी दूसरे के द्वारा किए गए कार्य के द्वारा परमेश्वर के लिए प्रशंसा अर्थात सराहना नहीं प्राप्त करूंगा, विशेष रूप से अन्य जातियों के मध्य। यदि आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि वो वास्तव में पिंतेकोस्त के अनुभव के लिए सराहे नहीं जा सकते। प्रेरित पौलुस पिंतेकोस्त के अनुभव के लिए सराहे नहीं जा सकते, हम उन्हें इस अनुभव के लिए नहीं सराह सकते। जहां तक सुसमाचार की सेवा का आरंभ है, वो पिंतेकोस्त के दिन से आरंभ हुआ है, और जहां तक सुसमाचार की सेवा के आरंभ का विषय है, वो प्रथम अन्य जाति व्यक्ति के पास सुसमाचार ले जाने के लिए भी नहीं सराहे जा सकते, क्योंकि ये कार्य प्रेरित पत्रस द्वारा किया गया। पत्रस ने कुरनेलियस नामक रोमी पलटन के सूबेदार को, जो कैसरिया का निवासी था, उसे सर्वप्रथम सुसमाचार सुनाया और बपतिस्मा दिया। कुरनेलियस प्रथम अन्य जाति मसीही हैं जो पत्रस के द्वारा मसीह की कलीसिया में सम्मिलित किए गए, पौलुस के द्वारा नहीं। तो पौलुस इस विषय के लिए भी नहीं सराहे जा सकते कि वो प्रथम सुसमाचार प्रचारक हैं जो अन्य जातियों के पास पहुंचे। प्रेरित पौलुस केवल उन बातों के विषय में बोलने का साहस करेंगे जिन्हें मसीह यीशु ने उनके द्वारा किया है, और यहां वो इसी बात को कह रहे हैं कि मैं केवल उन बातों के विषय में कहने का साहस करूंगा जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा की हैं। और पौलुस को एक विशेष प्रकार की सेवा सौंपी गई थी, और वो सेवा थी अन्य जातियों के लिए प्रेरिताई। प्रेरित पौलुस को अन्य जातियों के लिए प्रेरित नियुक्त किया गया। फिर यहां पर पौलुस ने एक शब्द का प्रयोग किया है, चिन्हों और अद्भुत कार्य की सामर्थ्य से। इसका तात्पर्य उन प्रमाण पत्रों से है जो प्रेरितों तथा सुसमाचार के सेवकों को प्रारंभ में परमेश्वर की ओर से दिए गए थे, जिनके द्वारा वो सुसमाचार को प्रमाणित करते थे, अर्थात जिनके द्वारा मसीह का सुसमाचार प्रमाणित होता था। ये प्रमाण पत्र अर्थात परिचय पत्र कलीसिया की उचित नींव रखने के लिए दिए गए थे, क्योंकि उस समय तक नया नियम लिखित रूप में अस्तित्व में नहीं आया था। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों के विश्वासियों को इस प्रकार से बताया, इफिसियों की पत्री के दूसरे अध्याय के 19 और 20 पदों में हम देखते हैं, अतः तुम अब विदेशी और अजनबी ना रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हो, और प्रेरितों तथा भविष्य वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें संपूर्ण रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। 20वें पद में लिखा है, और प्रेरितों तथा भविष्य वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। वो कहने का साहस कदापि नहीं कर सकते कि कलीसिया की नींव प्रेरित हैं। जी हां मित्र, पौलुस प्रेरित ऐसा नहीं कह सकते, और वो नहीं कहते हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों के तीसरे अध्याय के 11वें पद में वो बताते हैं, क्योंकि इस नींव को छोड़ जो पड़ी है और जो मसीह यीशु है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कलीसिया की नींव प्रभु यीशु मसीह है, परंतु प्रेरितों के द्वारा नींव रखने का कार्य किया गया है। नींव प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन रखने का काम प्रेरितों ने किया है। आपने राजमिस्त्री का नाम सुना है, आप इन प्रेरितों को राजमिस्त्री कह सकते हैं। फिर यहां पर हम पढ़ते हैं इल्लूरिकुम नामक स्थान के विषय में। ये रोमी साम्राज्य का एक प्रदेश है, ये इटली देश से लगा हुआ है, और इसका विस्तार एड्रियाटिक सागर तथा डेन्यूब नदी तक है। प्रेरित पौलुस ने इस स्थान की भी यात्रा की, और यहां भी मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया, और वो यहां इस स्थान का उल्लेख करते हैं, और वो कहते हैं, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लूरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। तब 20 और 21 पदों में प्रेरित कहते हैं, मेरे मन की आकांक्षा ये रही है कि जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे समझेंगे। मित्रवर, प्रेरित पौलुस एक विचित्र प्रकार के प्रचारक थे, उनकी सेवा भी विशिष्ट प्रकार की थी। वास्तव में प्रेरित पौलुस ने वहां प्रचार नहीं किया, उन स्थानों पर वे नहीं गए जहां कोई दूसरा प्रचारक प्रचार करने गया, या कलीसिया की स्थापना पहले से हो चुकी थी। वो समय नष्ट करने में रुचि नहीं रखते थे, वे वास्तव में प्रचारक थे, एक वास्तविक प्रचारक थे, क्योंकि एक वास्तविक प्रचारक समय नष्ट नहीं करता। उन्होंने कहीं जाने से पूर्व किसी समिति की स्थापना करके अपने आगे किसी को नहीं भेजा, अग्रघोषक को नहीं भेजा। वो जहां गए उनका किसी ने स्वागत भी नहीं किया। हां, पुलिस अधिकारी अवश्य उनके स्वागत के लिए सर्वप्रथम आते और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया करते थे, और यही उनका अतिथि सत्कार था। अब जबकि प्रेरित पौलुस उन स्थानों पर नहीं गए जहां पहले ही से सुसमाचार सुनाया जा चुका था, तो प्रश्न उठता है कि रोम की कलीसिया की स्थापना किसने की। मित्रवर, रोमियों की पत्री के 16वें अध्याय में प्रेरित पौलुस ने कुछ लोगों के नामों की चर्चा की है। ये वे लोग हैं जिन्हें पौलुस के द्वारा मसीह पर विश्वास लाने में सहायता पहुंचाई गई, अर्थात जिन्होंने प्रेरित पौलुस के द्वारा मसीह यीशु पर विश्वास किया और पुनः जाकर रोम में बस गए। इन कुछ विश्वासियों के द्वारा रोम में कलीसिया का विस्तार होता गया और इस प्रकार से रोम में पौलुस के द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई। जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां मसीह का सुसमाचार सुनाऊं, जैसा कि पौलुस यहां पर कहते हैं, मेरे मन की आकांक्षा ये रही है कि जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां सुसमाचार सुनाऊं। मित्र, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कथन पौलुस की सेवा का आधार था। ये पद यशाया नबी की पुस्तक के 52वें अध्याय के 15वें पद से लिया गया है। वास्तव में वास्तविक सेवा का यही ढंग है। यदि उनका ढंग ये ना होता तो इतने कम समय में अन्य जातियों तक सुसमाचार नहीं पहुंच पाता। हम प्रेरित पौलुस की सेवा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर प्रेरित पौलुस जैसे अनेक सेवक हमारे देश को प्रदान करें, ताकि समस्त भारतवासी इस अनुग्रह के सुसमाचार से अवगत हो जाएं, अपने सृष्टिकर्ता, अपने उद्धारकर्ता को पहचान लें और उसकी शरण में आ जाएं। अब आज के कार्यक्रम को इन्हीं वचनों के साथ हम यहीं पर रोक देते हैं। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपकी रक्षा करें। आमीन।
प्रिय श्रोताओ, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और यदि आज के अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, हम आपकी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। श्रोताओ, हम आपको बता दें कि आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारी ईमेल आईडी है hindittb@radiovv.org, hindittb@radiovv.org। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।